विदेशियों के ऊपर भी हावी हो जाती है। पृथ्वी हिलना आज तक भी कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जो भूकंप को रोक सके। आंधी तूफान अभी भी आते रहते। बाप कहते हैं अब मैं तुमको ऐसी स्वतंत्र दुनिया बनाने के लिए आया जिसमें सारी पृथ्वी तुम्हारी होगी, सारा आकाश तुम्हारा होगा और सारा समंदर तुम्हारा होगा। अभी क्या है, अभी तुम्हारा एरोप्लेन दूसरे के आकाश में चला जाए मार देंगे, गिरा देंगे। तुम्हारा जहाज दूसरे के समंदर में चला जाए बिना परमिशन के तो उसको खलास कर देंगे। तो अभी हदें हैं, ये मनुष्य की बनाई हुई हदें हैं। भगवान बाप आकर के सब हदों को तोड़वा देंगे, लेकिन इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? है इस यज्ञ को शुरू हुए कितने वर्ष हो गए? है 70 साल होने जा रहे हैं। 70 साल होने के बावजूद भी प्रकृति हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आई? बाप की कुंडली में कहते हैं बच्चे तुम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हो तो तुम स्वर्ग में होने चाहिए ना, फिर नरक में क्यों बैठे हो? 70 साल हो चुके, वो 70 साल के बाद स्वर्ग में होने चाहिए नरक में होने चाहिए? है अरे दुनिया में भी बाप का बच्चा बनता है तो 18, 20, 25 साल में बाप का वर्षा ले लेता है, अब यहाँ 70 साल के हो गए। और बाप का वर्षा किसी को नहीं मिला है, बेहद का बाप। अरे बेहद का बाप आया हुआ है तो बेहद की बादशाही मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिल पा रही? बाप डुरापा देते हैं, हेवनली गॉड फादर के बच्चे हो तो हेवन में होना चाहिए ना, मुरली में ही बोला, फिर नरक में क्यों बैठे हैं? इसका जवाब देखा हो जा, क्यों बैठे हैं नरक में? नहीं आया जवाब है, इसलिए नरक में बैठे हैं कि जो स्वर्ग बनाने वाला बाप आया हुआ है उसकी बातों में कब कब प्रभाव में आते हैं, लेकिन दूसरों के प्रभाव में जास्ती आ जाते हैं। जो बाप श्रीमत देते हैं उस श्रीमत में मनमत या मनुष्यों की मत मिक्स कर देते हैं, या यूं कहें कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो मायावी बैठे हुए दूसरे धर्म की आत्माएं वो हमें और हमारी बुद्धि को बरगला देती है। हमारी बुद्धि में बैठता है कि बाप आया हुआ है और वो माया और मायावी आत्माएं हमारी बुद्धि को हिला देती है, वो अनिश्चय पैदा कर देती है कि बाप नहीं आया हुआ। हम सेवा करने निकलते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को सिखा देते हैं कान बंद कर लो, अल्लाह मियां को याद करो। मुसलमान लोग क्या करते हैं, मस्जिद में जाके क्या करते हैं, कान बंद करते हैं, किसी की बात नहीं सुनेंगे और क्या किसको याद करते हैं, ऊपर को मुंह करके अल्लाह मियां को याद करते। तो शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कौन कर रहा है शूटिंग? है? कौन कर रहा है शूटिंग? मायावी आत्मा है शूटिंग कर रही है। माया को बेटी कहा जाता है, बाप कहते हैं माया मेरी बेटी है। बेटी को भी काम मिला हुआ है क्या? हिलाने का काम मिला हुआ है? ऐसे ही जो आया उसी को हिलाती रहेगी क्या? नहीं, उसको भी जो काम मिला हुआ है उसका भी कानून है। क्या कानून है? बच्चे जो मेरी मत पर नहीं चलते हैं, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, हे माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ। फटका फटका के उनकी हवा निकाल दो। तो माया तो अपना काम करेगी, माया तो बाप की आज्ञाधारी बच्ची है ना। और फिर ये भी बता दिया कि सबसे पहले बुद्धि से सरेंडर माया होगी क्या? अरे इतनी बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर हुए पड़े हैं और एडवांस नॉलेज में इतने सरेंडर हुए पड़े हैं, वो बुद्धि से सरेंडर नहीं है, है? क्यों? उनमें से कोई बुद्धि से सरेंडर नहीं हुआ अभी तक, और माया बुद्धि से पहले पहले सरेंडर हो जाएगी। ये संभव हो सकता है क्या? नहीं। बाप ने बोला है तो जरूर पत्थर की लकीर बोली होगी क्या? वास्तव में माया पहले बुद्धि को सरेंडर कर देती, अभी सरेंडर तो हो रहे लेकिन कुछ न कुछ अपनी अकल चलाते रहते हैं, बेसिक में भी चलाते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है 2-4 साल पहले कि ऐसे नहीं समझना है, ये आखिरी समर्पण समारोह है। अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार दादी की बुक से बोला अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे क्या? जो दोबारा समर्पण समारोह होगा उसमें माया आपका नंबर ले लेगी। इसलिए बाप की बड़ी बच्ची है, बड़ी बच्ची में ज्यादा ताकत होती है या छोटी छोटी बच्चियों में ज्यादा ताकत होती है? बड़े बच्चे में ज्यादा ताकत होती है या जो छोटे भाई होते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है? बड़े बच्चे को कहा जाता है दादा, क्या कहते हैं? बहुत दादागिरी दिखाता है। मुरली में बोला है जो बड़ा बच्चा होता है वो बाप समान होता है क्या? जब बाप अगर शरीर छोड़ जाए तो बड़े बच्चे के हाथ में सारी ताकत आ जाती है और वो छोटे भाइयों की ऐसे ही परवरिश करता है जैसे बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है। तो बड़ा भाई बाप समान होता है तो बड़ी बहन किस समान होती है? अरे माँ नहीं तो मौसी तो होगी। मौसी की भी तो बहुत मान्यता होती है। मुरली में माया मौसी बोला है या नहीं बोला है? बोला। बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो भाग जाते हैं घर छोड़ के और उनको ढूंढा जाता है, ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मौसी के घर। तो बाप के बच्चे यहाँ भी हैं, कारण या कारण उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, तो माया मौसी की शरण लिए बैठे हैं। अब समझ में आया क्या? राज समझ में आ गया कि एडवांस पार्टी में कौन से वंश की आत्माएं हैं? है? सब सूर्यवंशी आत्माएं। लेकिन दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है क्या? कोई पे सूर्यवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, पक्का सूर्यवंशी है। कोई पे चंद्रवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई पे बौद्धवंशी, कोई पे इस्लामवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है। तो जो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनपे जो दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो कैसे उतरेगा? बाप तो बोलते हैं ये मेरे बच्चे, साक्षात रुद्र के बच्चे हैं। तो रुद्र शंकर को कहा जाता है क्योंकि मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर धारण करते हैं तो नाम बदल जाता है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो शिव ने प्रवेश किया, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाया, फिर वो शरीर बदल दिया। जिस किसी में भी प्रवेश करते हैं, जिस ब्राह्मण बच्चे में, उसका नाम शंकर पड़ता है। क्यों शंकर नाम पड़ता है? शंकर माना मिक्स, क्योंकि शिव की सोल भी उसमें काम करती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उसमें चंद्रमा के रूप में मस्तक में प्रवेश करके कार्य करता है, और राम वाली आत्मा का वो अपना शरीर है ही है। तो एक ही शरीर में तीन आत्मा, इसलिए वो नाम शंकर पड़ता। तो शंकर और शिव को मिलाई देते हैं। क्यों मिलाई देते हैं? शिव ब्रह्मा को क्यों नहीं मिलाते? शिव विष्णु को क्यों नहीं मिलाते? शिव को 33 करोड़ देवताओं के साथ क्यों नहीं मिलाते? कोई कारण होगा? क्या कारण होगा? जो भी बाप के बच्चे हैं उन बच्चों में डायरेक्ट जो भी बच्चे हैं उनमें तीन देवताएं सबसे पहली है। उन तीन देवताओं के साथ आता है शिव, अकेला नहीं आता। तो जब अकेला नहीं आता है और तीन के साथ आता है तो त्रिमूर्ति शिव का आ जाता है। एक मूर्ति शिव नहीं, दो मूर्ति भी नहीं, त्रिमूर्ति शिव। और कहते भी है शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो अभी कितनी मूर्ति का काम हुआ? मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना निराकार। मूर्त माना साकार जिसकी मूर्ति हो, अमूर्त माना जिसकी मूर्ति ना हो। तो कितनी मूर्तियों का भी पार्ट प्रत्यक्ष हुआ? दो मूर्तियों का पार्ट। उसमें भी जो अभी भी ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं, ब्रह्मा को ही गीता ज्ञान दाता मानते हैं साकार में, उनकी बुद्धि में सिर्फ एक मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। कौन सी मूर्ति? ब्रह्मा की मूर्ति। और वो सूर्यवंशी बच्चे जो राम वाली आत्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही यज्ञ छोड़कर चले गए थे और अभी फिर यज्ञ में आ गए। वो एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चे, क्योंकि उनके लिए मुरली में बोल दिया है, जो एक बार ब्राह्मण बन जाता है वो भले शरीर छोड़ जाए तो भी वो ब्राह्मणत्व का जो गुण है और संस्कार है वो अगले जन्म में ले जाता है। तो वो आत्मा पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के दोबारा यज्ञ में आती है, तो लास्ट सो फास्ट चल जाती है। इतनी फास्ट जाती है कि वो दूसरी मूर्ति को तुरंत पहचान ले, क्या तुरंत। इसके लिए मुरली में बोला है, जो तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा सा ज्ञान सुनावेंगे फट से पकड़ लेगा, तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो तुम बार बार उसको सुनाते रहो वो नहीं मानेगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल लेगा, या तो सुनेगा ही, कहेगा दीदी दादियां दादा जब मानेंगे तब हम तुम्हारी बात। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कहते हैं कि बाबा ने बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, क्या इस्लाम धर्म का होगा तो इस्लाम धर्म का मुखिया जो भी ब्राह्मणों में होगा उसी की बात मानेगा, क्रिश्चियन धर्म का होगा तो क्रिश्चियन धर्म का जो मुखिया होगा जब वो मानेगा तब उसके फॉलोअर्स भी मानेंगे, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं। तो वो गुण धर्म यहां भी दिखाई पड़ेंगे। बाकी जो ज्ञान सूर्य के कुल के होंगे उनकी निशानी बता दी, क्या थोड़ा भी तुम उनको ज्ञान सुनावेंगे एडवांस नॉलेज सुनावेंगे वो फट से मान लेंगे और उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा, चल पड़ेंगे, ज्यादा तंग दुखी नहीं करेंगे। एक बच्चे वो होते हैं बड़े आराम से पैदा होते हैं, अम्मा को दुख नहीं देते, बाप को परेशानी में नहीं डालते कि हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन कराना पड़े। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिच्छू टिंडर की तरह होते हैं, बिच्छू जब पैदा होता है ना तो अपनी माँ का पेट फाड़ के पैदा होता है। आज की दुनिया में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि आराम से पैदा नहीं होते, हॉस्पिटल में जाके उनका पेट फाड़ना पड़ता है तब पैदा होते हैं। और सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होते थे? दुख देकर के पैदा होते थे या आराम से पैदा होते थे? गर्भ महल कहा जाता। तो आज की दुनिया में भी ये सब कुछ देखा जा रहा है और इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में अभी हो रही है। जो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे सूर्यवंशी पक्के होंगे वो बड़े आराम से इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे होंगे, कोई हिला हवाला नहीं करेंगे, और जो नहीं होंगे वो बहुत तंग करेंगे। तो बाप कहते हैं जो प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, जिसको प्यास ही नहीं लगी है उसको जबरदस्ती बार बार पिलाने की क्या दरकार है, जो भूखा हो उसको भोजन खिलाओ, जो भूखा ही नहीं है और तुम उसे भोजन देते जाओ तो वो तो उल्टी कर देगा। बाबा बोलते हैं उस बात को पकड़ लेना चाहिए, क्या और हमें परवाह किस बात की? बाबा ने तो हमको सबको वरदान दे दिया है, एडवांस पार्टी वालों को क्या वरदान दे दिया है, हैं? कि तुम्हारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर निकलेगा एडवांस में तो पूरे के पूरे परिवार को इस ज्ञान में आना पड़ेगा, तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप इतने निकल चुके हैं तो उनके सारे के सारे परिवार अगर इस एडवांस नॉलेज में आ जाएंगे तो 4.5 लाख तो हो ही जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो तंग तो नहीं होना चाहिए। बाकी ये है, माताओं को मोह ज्यादा लगा रहता है अपने बच्चों, अपने घर परिवार वालों के प्रति, तो कहती नहीं कल नहीं आज ही निकल आए, कल पता नहीं कि विनाश हो जाए, कहीं लेट हो जाए, टू लेट का बोर्ड लग जाए, तो फिर क्या फायदा? सोचते टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर तो प्रजा वर्ग में जाना पड़ेगा, प्रजा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती। तो बाप कहते हैं जो ज्यादा पीछे पड़ते हैं ना ज्ञान सुनाने के लिए वो फिर मुसलमान धर्म में चले जाते हैं। मुसलमान जो होते हैं ना वो बहुत जबरदस्ती करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण से अभी अभी मुसलमान बन जाओ नहीं हम तुम्हारा सर काट देते हैं। बाप कहते हैं हमारा सहज मार्ग है, हमारा कठिन मार्ग नहीं है, जो भी परिवर्तन करना है सहज सहज परिवर्तन करना है, घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का क्लेश पैदा नहीं होने देना। इसलिए बता दिया कि लौकिक और अलौकिक दोनों में तोड़ निभानी, ऐसे नहीं कि ज्ञान मिल गया है तो कोई कोई माताएं इतने उमंग उत्साह में आ जाती है कि घर में जाकर के जो भी चित्र वगैरह रखे हुए हैं दूसरे देवताओं के वो सब उठा के फेंक दिया। ये सब अंधश्रद्धा है, माने जबरदस्ती इस ज्ञान में चलना पड़ेगा जिस ज्ञान में हम चलते हैं। बाबा ने तो बोला हुआ है कोई को भक्ति करने से मना नहीं करना है, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति करने के लिए और सहयोग दे दो, जबरदस्ती उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कन्वर्ट करने वालों के ऊपर मुसलमान धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, जोर जबरदस्ती क्यों करना? हमें पढ़ाने वाला कौन है? बाप आया हुआ 70 साल से बोलता आया बच्चे मुझे याद करो, माँ एकम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो, और 70 साल में भी बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? दूसरों को भी याद करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं, माने बेविचारी याद छोड़ते नहीं। तो बाप को क्रोध आता है, है? अभी तक भी नहीं आ रहा है,
है?
अब आगे की आगे देखी जाएगी, अभी तक की बात बताई। अभी भी बाप के स्नेह का रूप चल रहा है, और बाप तो प्यार का सागर ही रहेगा। हाँ ये बोल दिया मेरे साथ धर्मराज भी है, ये नहीं बोला मैं धर्मराज हूँ। अगर वो खुद ही धर्मराज बन जाए तो प्यार का सागर नहीं कहा जाएगा, तो बाप तो प्यार का ही सागर, प्यार का सागर कभी मार नहीं मारेगा। 70 साल में अभी तक मार नहीं मारी तो आगे क्यों मारेगा? बाप तो प्यार ही करेगा, लेकिन जो धर्मराज का पार्ट है वो किसका है? धर्मराज मेरे साथ है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। छिलका चढ़ा हुआ है ना दूसरे धर्म का, दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है तो कहता खाल खींच के रख दूंगा, छिलका कहो खाल कहो। धर्मराज के डंडे तो प्रसिद्ध हैं। तो धर्मराज का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, निश्चिंत हो जा। क्या शंकर का पार्ट? अरे शंकर का पार्ट वो जगत पिता भी है और फिर धर्मराज भी है, है? उसमें जो चंद्रमा है उसने जो बहुत प्यार दिया है, तो जो प्यार ही प्यार दिया है और बच्चों ने उसको दुखी ही दुख दिया है, यह है कि नहीं? जो आकताई बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा को दुखी ही दुख दिया और ब्रह्मा ने उनको सुखी ही सुख दिया। ब्रह्मा बाबा ने गांठ बांध के रख ली कि बच्चों के भाव स्वभाव को मुझे नहीं देखना है, बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं इन्हें करने दो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं अपने को देखना, दूसरे को नहीं देखना। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो बच्चों का इतना सहन किया सारा जीवन, तो वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? है? अरे वो हिसाब किताब तो पूरा होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने सहन कर लिया तो बस हो गया हिसाब किताब पूरा, नहीं। बाहर की दुनिया में जब ज्ञान नहीं होता तब जो सहन करते हैं या सहन कराते हैं तो उनका एक गुना हिसाब बनता है, और यहाँ ज्ञान में आने के बाद 100 गुना हिसाब बनता है। प्राप्ति भी 100 गुनी तो घाटा भी 100 गुना। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी शेष आत्माओं को जिन्होंने दुख दिया है अथवा ब्रह्मा सरस्वती जैसी फॉलो करने वाली आत्माओं को दुख दिया है, तो वो हिसाब किताब आगे चल के पूरा नहीं होगा, वो 100 गुना बोझ चढ़ चुका। इसलिए अभी टाइम पकने जा रहा है, दूसरी मूर्ति का पार्ट पूरा हुआ और तीसरी मूर्ति का पार्ट शुरू होने जा रहा है। तीसरी मूर्ति का पार्ट शुरू होना माना स्थापना का कार्य प्रैक्टिकल में आ जाना, और जब स्थापना होगी एक तरफ तो स्थापना के नजारे जो देखेंगे वो जय जयकार करेंगे, और स्थापना के साथ साथ क्या होगा? विनाश भी होगा। किसका विनाश होगा? सुखदाइयों का विनाश होगा या सुखदाइयों का विनाश होगा? यज्ञ में रह करके जिन्होंने दुख देने का काम किया उन दुखदाइयों के लिए वो ब्रह्मा की सोल भले शरीर छोड़ गई है और भले अभी बाप के रूप में प्रवेश करके अभी भी अर्धनारीश्वर के रूप में माँ का प्यार दे रही है, लेकिन आगे चल करके जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होकर के महाकाली का पार्ट बजाएगी और असुर संहारिणी का पार्ट धर्मराज के रूप में सामने आएगा। है ब्रह्मा, धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा की सूर्य धारणाओं का राजा है, तो वो धारणाओं का राजा ऐसे नहीं कि सुखी ही सुख देता है फिर दूसरे रूप में वो मार भी मारेगा, और ऐसी मार मारेगा कि कोई भी बच्चा सुधरे बगैर नहीं बचेगा। ओम शांति।